यहोवा के गवाहों के अकीदे क्या हैं? हम यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं जैसे उनके इब्तदाई शागिर्दों ने किया।
इस मजमून में हमारे बुनियादी अकीदों के बारे में मुख्तसरन बताया गया है। खुदा, हम वाहिद और सच्चे खुदा की इबादत करते हैं जो सब चीजों का खालिक और लामहदूद कुदरत का मालिक है। उसका नाम यहोवा है। पाक कलाम में उसे अब्राहम नबी, मूसा नबी और यीशु मसीह का खुदा कहा गया है। बाइबल, हम ये मानते हैं कि बाइबल खुदा के इल्हाम से लिखी गई है और इसमें इंसानों के लिए खुदा का पैगाम है। इसमें कुल 66 किताबें हैं जिन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। हमारे अकायद की बुनियाद यही 66 किताबें हैं। मजहबी अलूम के एक प्रोफेसर जेसन बेदौन ने यहोवा के गवाहों के बारे में लिखा, उनकी तालीमात और काम बाइबल पर मबनी है। वो बाइबल की बातों पर तहकीक किए बगैर कोई राय कायम नहीं करते। फुटनोट में लिखा है, ये इक्तबास किताब ट्रूथ इन ट्रांसलेशन के सफा 165 से लिया गया है। हम पूरी बाइबल पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इसके कुछ हिस्सों के मानी मजाजी हैं और इन्हें लफ्ज़ पर लफ्ज़ नहीं लिया जा सकता। यीशु मसीह, हम यीशु मसीह की तालीमात और मिसाल पर अमल करते हैं और उन्हें खुदा का बेटा और अपना निजात दहिंदा मानते हैं। इसलिए हम मसीही हैं, लेकिन हमने बाइबल से सीख लिया है कि यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा नहीं है और तसलीस का अकीदा भी बाइबल के मुताबिक नहीं है। खुदा की बादशाहत,
ये बादशाहत मसीहियों के दिलों में नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी आसमानी हुकूमत है।
वो वक्त दूर नहीं जब ये बादशाहत इंसानी हुकूमतों की जगह ले लेगी और जमीन के लिए खुदा का मकसद पूरा होगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइबल की पेशगोइयों के मुताबिक हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं। यीशु मसीह खुदा की बादशाहत के बादशाह हैं और उन्होंने 1914 में हुक्मरानी शुरू की। निजात, यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की ताकि इंसान गुनाह और मौत की कैद से आजादी हासिल कर सकें। इस कुर्बानी से फायदा हासिल करने के लिए लोगों को ना सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए बल्कि अपनी रविश भी बदलनी चाहिए और बपतिस्मा भी लेना चाहिए। एक शख्स के कामों से जाहिर होता है कि उसका ईमान जिंदा है या मुर्दा। लेकिन हम खुद से निजात हासिल नहीं कर सकते, बल्कि ये खुदा की अजीम रहमत की बदौलत मिलती है। आसमान, यहोवा खुदा, यीशु मसीह और खुदा के वफादार फरिश्ते आसमान पर रहते हैं। फुटनोट में लिखा है, लेकिन उन फरिश्तों को आसमान से निकाल दिया गया जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की। इंसानों में से सिर्फ 144,000 को आसमान पर जिंदगी मिलेगी ताकि वो यीशु मसीह के साथ बादशाहत करें। जमीन, खुदा ने जमीन को इसलिए बनाया ताकि इंसान हमेशा तक इसमें बसें। जो लोग खुदा के फरमाबरदार रहेंगे उन्हें वो जमीन पर फिरदौस में रखेगा और अच्छी सेहत और हमेशा की जिंदगी से नवाजेगा। बुराई और मुसीबतें, इनका आगाज उस वक्त हुआ जब खुदा के एक फरिश्ते ने उसके खिलाफ बगावत की। बगावत करने के बाद उस फरिश्ते को शैतान या इबलीस का लकब दिया गया। शैतान ने पहले इंसानी जोड़े को भी बगावत में अपने साथ मिला लिया, जिसके नतायज तमाम इंसानों को भुगतने पड़ रहे हैं। शैतान ने खुदा पर जो इल्जाम लगाए उनका जवाब देने के लिए खुदा ने बुराई और मुसीबतों को अब तक खत्म नहीं किया, लेकिन वो इन्हें जल्द ही खत्म कर देगा। मौत, मरने के बाद इंसान का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो दोजख या जहन्नुम में नहीं जाता और ना ही उसे आग में तड़पाया जाता है। वो वक्त दूर नहीं जब खुदा अरबों मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन जो लोग जिंदा होने के बाद खुदा की मर्जी पर नहीं चलेंगे उन्हें हमेशा के लिए हलाक कर दिया जाएगा। खानदान, शादी एक ऐसा मुकद्दस बंधन है जिसका आगाज खुदा ने किया और उसने सिर्फ एक मर्द और एक औरत को इस बंधन में बांधा। इसलिए हम ये मानते हैं कि मर्द को एक ही औरत से शादी करनी चाहिए और औरत को एक ही मर्द से। तलाक सिर्फ उस सूरत में जायज है जब शौहर या बीवी में से कोई हरामकारी करे। हमें पूरा यकीन है कि पाक कलाम में पाए जाने वाले उसूलों पर अमल करके घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। इबादत, हम ना तो सलीब इस्तेमाल करते हैं اور نہ ہی کسی بت، مورت یا مجسمے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری عبادت کے کچھ بنیادی پہلو یہ ہیں: ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان باتوں پر سوچ بچار کرتے ہیں جو ہم پاک کلام سے سیکھتے ہیں، ہم اجلاس منعقد کرتے ہیں تاکہ ہم مل کر دعا کریں، گیت گائیں، پاک کلام پر غور کریں اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ہم خدا کی بادشاہت کی خوشخبری سناتے ہیں، ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت گاہوں اور دوسری عمارتوں کی تعمیر اور مرمت کا کام کرتے ہیں جن کے ذریعے دنیا بھر میں ہمارے تبلیغی کام کو فروغ ملتا ہے، ہم آفت کی صورت میں امدادی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ تنظیم: پوری دنیا میں ہماری کلیسیائیں یعنی جماعتیں ہیں، اور ہر کلیسیا میں بزرگوں کی ایک جماعت ہے جو اس کی نگرانی کرتی ہے۔ ہمارے بزرگ بلا معاوضہ کام کرتے ہیں اور انہیں کوئی خاص القاب نہیں دیے جاتے، جیسا کہ پادری یا فادر وغیرہ۔ ہم نہ تو دیکی یعنی مال کا دسواں حصہ لیتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اجلاسوں پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ہماری تنظیم کے تمام اخراجات ان عطیات سے پورے ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر دیے جاتے ہیں۔ ہماری تنظیم کو ایک گورننگ باڈی کے ذریعے ہدایات اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، جس کے ارکان بڑے تجربہ کار ہیں اور ہمارے مرکزی دفتر میں کام کرتے ہیں۔ اتحاد: ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ہمارے عقیدے ایک ہی ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے رنگ، نسل، سماجی حیثیت یا پس منظر کی وجہ سے اس سے امتیازی سلوک نہ کریں، لیکن ہمارے متحد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی رائے تھوپتے ہیں۔ ہر یہوا کا گواہ پاک کلام کے مطابق اپنے ضمیر کی تربیت کرتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ چال چلن: ہم دوسروں کے لیے بے لوس محبت ظاہر کرتے ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو خدا کو ناپسند ہو، مثلاً ہم خون نہیں لیتے، ہم صلح پسند لوگ ہیں اور ہم جنگ میں حصہ نہیں لیتے، ہم اپنے ملک کی حکومت کا احترام کرتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، بشرطے کہ یہ قوانین خدا کے قوانین کے خلاف نہ ہوں۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات: یسوع مسیح نے حکم دیا، اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت کرو جس طرح تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسیحی دنیا کا حصہ نہیں ہے، متی 22 باب کی 39 آیت، یوحنا 17 باب کی 16 آیت۔ اس لیے ہم سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لیتے اور دوسرے مذہب کے ساتھ مل کر اجتماعات منعقد نہیں کرتے، مگر ہم ان معاملوں میں دوسرے لوگوں کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ اگر آپ یہوا کے گواہوں کے عقیدوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر ہمارے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں، ہمارے کسی دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے اجلاس پر آ سکتے ہیں یا اپنے علاقے میں کسی یہوا کے گواہ سے بات کر سکتے ہیں۔